पिता परमेश्वर, हम बहुत ही दीनता के साथ और बहुत ही नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आपका वचन हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन सबको हमारे सामने लेकर आने पाए और हम समझने पाए कि ये हमारे अंदर कमियां हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें हमारे अंदर से दूर होने पाए और आप हमारे जीवन में प्राथमिकता होने पाए, आपका वचन हमारे जीवन में प्राथमिकता होने पाए। हम में से हर एक के हृदय को, कानों को खोले, हमारा ध्यान यहीं पर रहे, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके प्रभु। और मैं नहीं वरन पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरे द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में जब तक हमारा जीवन है, हमारी बहुत सारी भौतिक जरूरतें होती हैं, संसार की जरूरत होती है, जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं, रहते नहीं रहते। और जब निर्भर रहते हैं उनके ऊपर, और जो अगर वो हमारे पास होती है तो क्या कहते हैं, वो चिंता नहीं होती है, वही क्या कहते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। लेकिन जब वो चीज खत्म हो जाती है, एकदम से सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किस प्रकार से हो गया, है ना, उस चीज की हमें एकदम से कमी हमारे अंदर आने, हम चिंता में हो जाते हैं अरे क्या हो गया। जैसे कल रात को क्या हुआ, हम खाना बना रहे थे, कल रात को खाना बनाते बनाते बीच में ही एकदम सिलेंडर खत्म हो गया, और हमारे पास एक ही सिलेंडर था, बीच में सिलेंडर खत्म हो गया, मी जो हम जो खाना बना रहे थे तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम पका, लेकिन प्रभु की दया से बन गया। तो एकदम से सोचा अरे क्या करें, कहाँ से लेकर आए, एक ही सिलेंडर है, हमें जहाँ पे कल्याणपुरी से लेकर आते हैं, कल्याणपुरी से लेकर आने में भाई टाइम लग जाएगा। तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने क्या कहते हैं, उस स्थिति में भी सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है, थोड़ा सा खाना बनाए, थोड़ा सा आधा नहीं बनाए, लेकिन हम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी कलीसिया के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमारी कलीसिया में से एक कलीसिया, एक परिवार ने हमारे लिए रोटी बना के भिजवा दी, एक एक परिवार ने क्या कहते हैं, हमारे जो सिलेंडर खत्म हो गया था उसने सिलेंडर दे दिया। तो हमारे परिवार के लोग, हमारी कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। तो जो मुख्य जो बात यहाँ पर यह है कि जब कमी, जब किसी चीज की कमी होती है, एकदम से हम सोचने लग जाते हैं अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किस प्रकार से हो गया। और जिसमें से एक चीज है जो बहुत सारी चीजों में जो हम देख सकते हैं, जो है पैसा, क्या है, और जो पैसा है वो हम सबकी क्या है, क्या है, पर पैसा, पैसा सब कुछ नहीं है, संसार की जो भी चीजें वो सब कुछ नहीं है, चाहे पैसा है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो भाई बच्चे हैं, चाहे वो कोई सी भी बात है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सब कुछ नहीं है। जो सब कुछ है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, वो है हमारा परमेश्वर। कौन है हमारा परमेश्वर? सब कुछ है हमारा परमेश्वर, जीवित है हमारा परमेश्वर, क्या है, इतना याद रखिए, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसकी निगाहें हमारी ओर है, किसकी ओर है, हमारी ओर, उसकी निगाहें हमारी ओर देख रहा है, हम उसकी बेटी हैं, उसके बेटे हैं, हम उसके बच्चे हैं, राजकुमार है, राजकुमारी है, वो जानता है हमारी क्या जरूरत है, वो जानता है हमारे घर के अंदर क्या जरूरत है, वो जानता है हमारे परिवार के अंदर क्या जरूरत है, लेकिन साथ में वो ये भी जानता है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है, वो भी जानता है, वो ये जानता है कि हमारे जीवन में वो परमेश्वर पहले है या नहीं है, वो ये भी जानता है, वो ये भी जानता है कि हमारे जीवन में भाई पैसा पहले है या परमेश्वर पहले है। भाई कई लोग क्या कहते हैं, फेसबुक के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे स्टेटस आप अगर देखेंगे पढ़ने को मिलते हैं, जिसके अंदर भाई परमेश्वर वाले भी होते हैं, जिसके अंदर पैसे वाले भी होते हैं, ठीक है, पैसे वाले भी होते हैं, और जो जिस प्रकार से लोग स्टेटस डालते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, उससे पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मनों के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखें, हमारे जीवन में जो सबसे पहला जो होना चाहिए वो क्या है, परमेश्वर। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमेश्वर कैसा है हमारा। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में सही जगह पर है ना, तो परमेश्वर इस दुनिया की कोई भी चीज हमको भाई कमी उसकी होने नहीं देगा। जैसे कल हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, प्रभु ने भूखा नहीं सोने दिया, है ना, प्रभु ने उसी मतलब प्रभु ने अच्छे से उपलब्ध कराया, भरपेट खाया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सबके जीवन में इतना याद रखें, परमेश्वर पहले स्थान पर होना है, ठीक है। और एक कहानी हम यहां पर देखेंगे, अगर परमेश्वर जहां पर है वहीं पर क्या है, अनंत जीवन है, क्या है, कई लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, कई लोगों को स्वर्ग चाहिए,
स्वर्ग चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन स्वर्ग कहां है? जहां परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने, जिसको हम स्वर्ग सोचते हैं, परमेश्वर ने अगर वो जगह छोड़ दी और परमेश्वर कहीं और पर है, तो स्वर्ग कहां पर है? जहां पर, जहां परमेश्वर है। इतना याद रखें, जहां परमेश्वर है वहीं अनंत जीवन है। और सोचें, हम सबको अनंत जीवन में जाना है। कहां पर जाना है? हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जो अनंत जीवन का वारिस नहीं होना चाहता है। हम सब अनंत जीवन का क्या होना चाहते हैं? लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में देखेंगे, 10 उसका 17 से पढ़ेंगे, और देखो यहां पे क्या लिखा है।
घर में चेलों ने इसके
मरकुस उसका 10वां अध्याय 17 पद से,
जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये जवान व्यक्ति है, ये ज्यादा उम्र का नहीं है, और ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, लोगों में परिचित व्यक्ति है, और परिचित व्यक्ति है, लोग उसका सम्मान करते हैं। और ये जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उस समय में क्या होता था, ऐसे भाग कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका पहनावा, जैसे हम पैंट कमीज पहनते हैं, वैसे पहनावा था नहीं उनका। भाई जैसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, भाई पूरा नीचे तक रहता था, जमीन का पैर के नीचे तक रहता था। तो उनको अगर भागना है तो उसको वो उठाकर, ऐसे उठाकर, उसको पूरा नीचे से ऐसे उठाकर उसको भागना पड़ेगा। ऐसे उठा के भागने का मतलब है भाई, एक अपमान की बात है। लोग बोलेंगे, अरे कैसे भाग रहा है ये, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति कैसे भाग रहा है, क्या दिमाग ठीक तो नहीं है इसका। लेकिन इसने किसी बात की इसी की चिंता नहीं करी, वो भागता हुआ गया, और भागता हुआ जाकर वो कहां पर पड़ गया? परमेश्वर के पैरों पर, घुटनों पर बैठकर प्रभु से क्या करने लगा, भाई घुटने टेक कर उससे पूछा। ठीक है, घुटने टेक लिए प्रभु के सामने, लोगों की परवाह नहीं कर रहा, चेलों से यीशु मसीह गिरे पड़े, घुटने टेके और यीशु मसीह से पूछा, हे उत्तम गुरु, क्या बोल रहा है? यहां पर यीशु मसीह गुरु से ऊपर है, इतना याद रखें। वो यीशु मसीह के गुरु की तरह देख रहा है, किसकी तरह देख रहा है? जैसे उसमें शास्त्री हैं, फरीसी हैं, जो वही शिक्षा देते हैं, धर्म का जो ज्ञान देते हैं, उस प्रकार से यीशु मसीह को ले रहा है। ठीक है, उसने परवाह नहीं करी, लेकिन यीशु मसीह को मसीहा की तरह नहीं ले रहा, परमेश्वर की तरह नहीं ले रहा। ये यीशु मसीह को जो ले रहा है, एक गुरु की तरह ले रहा है, जैसे शास्त्री हैं, फरीसी हैं, याजक, इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर बोला उत्तम, क्या बोल रहा है? और उस समय में जो उत्तम जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? गुरुओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहां पर ये एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोल रहा है ये? अधिकारी होने के लिए, क्या करने के लिए? अनंत जीवन का अधिकारी। उसको ये पता है कि भाई इस दुनिया के बाद एक अनंत जीवन है, इसको ये पता चल गया है, इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है, क्योंकि ये ऐसे समाज से आया जहां से बचपन से इस बात को सीखता हुआ आया कि इसके बाद एक अनंत जीवन है। भाई उस अनंत जीवन के अंदर जाने का मतलब है कि भाई वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, वहां पे कोई बीमारी नहीं है, वहां पे कोई समस्या नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और इसके अंदर ये बात है कि मैं अनंत जीवन में जाना चाहता हूं। और आपको पता है, जिस भारत में हम रहते हैं, लोग उस अनंत जीवन में का वारिस होने के लिए बहुत सारे काम करते हैं जिससे वो स्वर्ग में जाएं, जिसको कहते हैं धर्म के काम। क्या कहते हैं? पुण्य के काम। किसके काम? पुण्य के काम करते हैं, जिसमें गायों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना बुरा नहीं है, गाय को खाना खिलाना, या फिर भाई क्या कहते हैं, पक्षियों को भाई बीज, भाई वो दाने डाल देना, ये बुरा नहीं है। लेकिन भाई गाय को खाना खिलाना, भिखारी को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाने से, इधर उधर यात्रा करने से, वो हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। इतना याद रखें, वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता है। और यहां पर ये जो बोल रहा है कि भाई अनंत जीवन का मैं अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, और यहां पर यीशु मसीह बहुत साधारण सी बातें बोलते हैं। 18 में देखो क्या लिखा है,
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर।
ठीक है, यहाँ पर ये जो बात है, ये जो बात करना, यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह एक पूरी तरह 100% इंसान भी है। वो अपने आप को ये डिनाई नहीं कर रहे कि वो परमेश्वर नहीं है, वो इंकार नहीं कर रहे कि वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो इस बात को बता रहे, भाई तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? तू मुझे गुरु भी कह रहा है और साथ में उत्तम भी कह रहा है। बोला भी जो उत्तम है वो सिर्फ परमेश्वर है। इस बात को क्लियर कर रहा है कि सिर्फ जो उत्तम है वो परमेश्वर है। और देखो आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं,
तू अंधों को तो जानता है, हत्या ना व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया।
ठीक है, क्या बोल रही है? देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाओं को लेकर उसने बोला कि भी तू तो इन बातों को जानता है, हत्या नहीं करना, और क्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, माता पिता का आदर करना। और बोल रहा है, प्रभु मैं तो इनको क्या कर रहा हूं, लड़कपन से। लड़कपन का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? बोल रहा मैं बचपन से। अब यहां पर यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? देखो यीशु मसीह का प्रत्युत्तर एकदम अलग है। देखो क्या बोल यहां पर लिखा है 21 में,
यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया।
कैसा प्रत्युत्तर है यीशु मसीह का? यीशु मसीह ने उसने बोला, प्रभु ये तुम्हें लड़कपन से मानता हुआ आया हूं। और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, कैसे? गुस्से में देखा, कैसे देखा? प्यार प्रेम से देखा। और प्रेम से देखकर क्या करा उससे? प्रीति करी। क्या करी? क्या करी उससे? मतलब इसका मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है ना कि भाई क्या कहते हैं, हम किसी से बात कर, किसी व्यक्ति को जानते हैं, और जब उस बात को लेकर जब उससे बात करते हैं, हमें पता है इसके अंदर ये बात, ये कमी है इसके अंदर। और जब बोलता नहीं मेरे अंदर ये बात तो नहीं है, और कई बार होता है हम अंदर से भाई वो जाते हैं, इसने ऐसे कैसे बोल दिया। कई बार होता है हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं, मुझे तो पता है ये कैसा है। कुछ इसी प्रकार से यीशु मसीह ने उसकी तरफ प्यार से देखा, प्यार से दृष्टि करी, और उसको प्रेम प्रीति करी। क्या करी? प्रीति करी उससे। ठीक है, और देखो यहाँ पर यीशु मसीह उसकी जड़ को पकड़ते हैं।
और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे।
ठीक है, ये व्यक्ति बहुत अमीर था। ये व्यक्ति क्या था? ये व्यक्ति बहुत अमीर था, इसके पास बहुत धन था। और यीशु मसीह ने उसकी नस पकड़ ली। यीशु मसीह ने नस पकड़ के उसको क्या बोला कि भाई जो भी कुछ तेरे पास है सारा कुछ तू क्या कर, बेच कर किसको दे दे? कंगालों को दे दे। और इसमें इसको इसको कहां, इसके लिए, किसके लिए यीशु मसीह के पास आया था? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, कंगालों को तो अपना सारा धन बेच के दे दे। फिर आगे, ठीक है, यीशु मसीह ने क्या बोला? भाई अपना सारा धन, जो भी बैंक में है, जो भी घर में है, जो भी तेरी जायदाद है, जो भी तेरी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ बेच कर तो क्या कर दे? कंगालों को दे दे, तो स्वर्ग में क्या होगा तेरे लिए? क्या मिलेगा? धन मिलेगा। स्वर्ग का धन कैसा है? वो कभी खत्म नहीं होगा। स्वर्ग का धन कभी खत्म नहीं होगा। स्वर्ग का जब धन की बात कर रहे हैं प्रभु, ये वास्तविक धन है, और ये धन कभी खत्म ना होने वाला धन है, असंतुष्टि ना लाने वाला धन है, ये संतुष्ट हमेशा रखेगा, ये वाला धन है। बोला भाई स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या हो ले? ये बात है भाई, तुझे अगर अनंत जीवन का वारिस होना है, पहला अपना जो तेरी कमी है, जिसके पर तेरा ध्यान है, जिसकी तरफ तेरी निगाह है, जो तेरे लिए बहुत प्रिय है, उस चीज को तू क्या कर दे? छोड़ दे। उस चीज को तू त्याग दे, और तू क्या कर ले? तेरे लिए स्वर्ग में धन होगा, और तू क्या कर ले? मेरे पीछे। छोड़ना काफी नहीं है, छोड़ दे और मेरे पीछे। आप देखेंगे जैसे हम भारत के अंदर रहते हैं, जैसे आप देखेंगे इधर उधर निरंकार के सत्संग लगते हैं। ठीक है, आपने कई के बारे में पढ़ा होगा। अभी मैंने एक के बारे में सुना, एक सरदार जी थे जो बहुत अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर थे। उन्होंने अपना सारा धन छोड़कर अपना सारा धन निरंकारियों के नाम कर दिया, मतलब उनके जो भी था उनके नाम करके वो एक बाबा बन गए, साधु बन गए। क्या ये काफी है? क्या ये अनंत जीवन का वारिस होने के लिए काफी है? नहीं। यहां पे यीशु मसीह दूसरी बात कर रहे हैं, धन छोड़, मतलब अगर तेरा धन धन पर ध्यान है, धन को छोड़ और तू क्या कर? मेरे पीछे। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, जो बात हमारे जीवन में मुख्य है, जो बात हमारे जीवन में प्राथमिक है, जो हमारे जीवन में सबसे ऊंचे पर है, उसको छोड़ के तू क्या कर? मेरे पीछे। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो सबसे आगे है? कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं हम? कौन सी चीजें हैं? क्या कैरियर के बारे में सोचते रहते हैं? मेरा कैरियर 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 कैसे बनेगा? ओ जॉब 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 कैसे लगेगी? ये पैसा 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 कहां से आएगा? मेरे पास पैसा नहीं है,
मेरे पास कैरियर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, ओ मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये सब दुनिया की चीजें कहां से आएगी, कैसे आएगी, और उन सारी बात में सोचते 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 बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद और सुंदरता कम, सोचते रहते हैं, रात की नींद गायब, रात में नींद गायब हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लग जाता है, गुस्से वाला स्वभाव होने लग जाता है। क्यों, क्या सोच रहे हैं, ये कहां से होगा, कैसे होगा, ये जो बात अटकी पड़ी है कहां से सॉल्व होगी, इस बात में से मैं कैसे भरूंगा। और यहां पर यीशु मसीह ने उसकी सही नस पर हाथ रख दिया। उसका ध्यान कहां था, पैसा, कहां पर ध्यान था, बहुत धनी था अभिषेक भाई, क्या था, बहुत धनी था, उसकी नस पर हाथ रख दिया। और यीशु मसीह आज हमारी नस पर हाथ रखना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारी कमियों को जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं हमारा ध्यान किधर है। बेटा उस बात को तो छोड़ और मेरे पीछे, उस बात पर ध्यान मत लगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे घराने का परमेश्वर हूं, जब मैंने तुझे चुना है। जवान जो शेर है वो भूखा रह सकता है, जवान शेर को घटी हो सकती है, जो मेरे नहीं है उनको घटी हो सकती है, लेकिन तुम मेरे हो, तुम्हें मैं किसी प्रकार की घटी होने, तुम मेरे हो। वो बोला तुम मेरे पीछे हो ले, मतलब बोल रहे। अब सोचो एक जो व्यक्ति था, जकरिया जो व्यक्ति था, आपने देखा होगा, नाटा था और यीशु मसीह के पीछे आया, और यीशु मसीह की, वो बहुत अमीर व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि तू धन को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, उसने ऑलरेडी पहले अनाउंसमेंट कर दिया, प्रभु भाई मैं जिससे मैंने जितना लिया है उससे मैं ज्यादा मैं उसको दे दूंगा। प्रभु ने उसको बोला नहीं, क्योंकि प्रभु उसके अंदर की जानते थे, लेकिन इसके अंदर की बात प्रभु जानते थे। इसके जीवन में बोल रहा, भाई प्रभु ये सारी बातें तो मैं करता हुआ आया हूं। हम सबके अंदर स्ट्रगल होता है, पाप का होता नहीं होता, उसके अंदर भी उन बातों को स्ट्रगल होगा, इसलिए प्रभु ने प्रीति के साथ उसके अंदर देखा, और उन सबसे बढ़कर जो उसके अंदर जो प्राथमिकता थी उसको उसने यीशु मसीह ने देखा और बोला बेटा इसको छोड़। कौन सी ऐसी बात है जिसको हमें छोड़ने की जरूरत है, जिसने परमेश्वर की जगह ले ली है, जिसने परमेश्वर की जगह लेकर और वो जगह बैठ गई, हो सकता है वो कैरियर हो सकता है वो जॉब हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो भाई घर हो सकता है बच्चों की चिंताएं हो सकता है वो पति की चिंता हो सकता है वो पत्नी की चिंता हो सकता है मम्मी की पिताजी की अलग अलग चिंताएं हो, और उसने प्रभु की जगह ले ली है, और प्रभु बोल रहे हैं आज हमारे साथ में और बोल रहे हैं बेटा तू सारी बात छोड़, पीछे हटा और मेरे पीछे हो ले, तुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ हूं तो सारी चीज तेरे, हमें क्या चाहिए। अगर वो हमारे साथ है, अगर वो हमारे साथ है तो हमें और क्या चाहिए। सोचो कुछ इस प्रकार से, एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखें और एक तरफ सोचो एक ऐसी मशीन रखी है जिसमें अगर ये भी डालें तो असली नोट निकल के आ जाएगा 2000 के। क्या क्या लेंगे, मशीन लेंगे 1 करोड़ रुपए लेंगे है, क्या लेंगे, क्या लेंगे आनंद भैया, मशीन लेंगे भाई। 1 करोड़ तो खत्म हो जाएगा लेकिन मशीन तो दोबारा बना देगी है भाई। नकली कैसी भी कागज लो डालो उसके अंदर क्या बन गया भाई, 2000 का नोट दबा भाई लगाओ और 2000 का नोट बन गया। हमारा परमेश्वर सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, सारी चीजों की उपलब्धि कराने वाला परमेश्वर, क्यों उन चीजों की तरफ ध्यान लगाए पड़े जो संसारिक है, जो नष्ट हो जाएगी, जो खराब हो जाएगी, जिसके अंदर कीड़े लगते हैं, जो यहां पर से चली जाएगी, आज बैंक में है, आज घर के अंदर है, कल नहीं है, फिर दोबारा हम उसका ऑर्डर करते हैं, दोबारा वो चीज आती है, लेकिन परमेश्वर हमारी तमाम बातों की उपलब्धि कराते हैं। पर वो बोले सब कुछ छोड़ दे और तू क्या बोले मेरे, वो सब कुछ है, इतना याद रखे वो ही सब कुछ है। अगर वो है तो सब कुछ है, वो हमारे पास नहीं है तो कुछ भी हमारे पास नहीं हो सकता, हम कंगाल भरा जीवन जिएंगे हम। और देखो आगे क्या हुआ है, और यही एक ऐसा व्यक्ति था पता है 22 में देखो क्या लिखा है,
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई।
क्या उदासी, क्यों छा गई, क्यों उदासी छा गई, क्यों उदासी छा गई, क्योंकि उसका ध्यान कहां था, पैसे पर, कहां पर ध्यान था, हाँ,
और वे शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वे बहुत धनी था।
बाइबल के अंदर ये इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आया और कुछ लेकर नहीं गया। यीशु मसीह के पास अगर बाइबल पढ़ेंगे ना, यही एक अनोखा व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आते हुए भी यीशु मसीह से कुछ लेकर नहीं गया। यीशु मसीह को ध्यान कर नहीं गया, यीशु मसीह को बिगड़ जाने ये चला गया, उदास होकर निराश होकर शोक में चला गया, अनंत जीवन को उसने छोड़ दिया। यीशु मसीह ने इसको इतना बड़ा ऑफर दिया, इसको इतनी बड़ी बात को रखा, ये कर दे, तू मेरे पीछे ले, अनंत जीवन का तू अधिकारी है, और शोक में उदासी होकर चला गया। सोचें, और आगे देखो क्या लिखा, यीशु मसीह कुछ बातें कहते हैं।
यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए।
चेले उसकी बातों से क्यों अचंभित हुए भाई है? अगर देखेंगे ना यहाँ पर दो तीन बार अचंभित हो रहे हैं, दो बार अचंभित हो रहे हैं। उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले हैं, उस समय वो डरे हुए हैं, उस समय वो अचंभित हुए पड़े हैं। क्यों अचंभित हुए पड़े? अगर उससे पहले पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे 35 से, अगर उसमें देखेंगे याकूब और यहूना आ रहे हैं यीशु मसीह के बाद चुपके से आ रहे हैं, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे को एक को दाहिने बिठाना एक को बाएं बिठाना। क्यों अचंभित हो रहे हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे जो आए हुए उनका मकसद और है, उनको अधिकार चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको जीवन के अंदर में समृद्धि चाहिए। प्रभु देते हैं, प्रभु देते हैं, दुनिया की चीजें देते हैं, दुनिया की चीजों का उपलब्धि कराते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह का भाई गुरु मानने का, मसीह मानने का ये है कि भाई यीशु मसीह के पास आने से अधिकार मिलेगा, पद मिलेगा, चीजें मिलेंगी, इसलिए वो अचंभित है। वो सोच रहे भाई यीशु मसीह के पास आकर भाई अमीर बन जाएंगे, और यीशु मसीह बोल रहे हैं तो पैसा छोड़ दे, अमीर लोगों का भाई क्या कहते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह दुनिया की चीजें उपलब्ध कराते हैं जब उसके पीछे चलते हैं, प्रभु इंतजाम कराते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर सबसे पहली जगह पर होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में जो भी श्राप है उन श्रापों को तोड़ देते हैं, जो भी श्राप है, चाहे वो किसी प्रकार का श्राप है। और यहां पर अचंभित वो हो गए। फिर आगे देखो क्या लिखा है।
इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
ठीक है, किस पर भरोसा रखते हैं, किस पर भरोसा रखते हैं? नहीं, यहाँ पर किसी और पे, धन पर भरोसा रखते हैं। जो किस पर भरोसा रखते हैं? अगर धन सब कुछ होता ना तो भाई धन के आने से सब कुछ ठीक हो जाता, तो जितने भी भाई अमीर लोग हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जिन धनवान लोग हैं, अभी धनवान हैं लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उनका परिवार का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, उनके बच्चे क्या कहते हैं, उनके बच्चों को वो सही तरीके से समय नहीं दे पाते हैं, वो घर का माहौल बिगड़ा पड़ा है, पैसा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन यहां पर बोल रहा है भाई, जो जिनका धन पर भरोसा है उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और जो आगे क्या बोलते हैं,
परमेश्वर ने राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज।
इसका मतलब क्या है भाई, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज, इसका मतलब क्या है? यहां पर लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, इसका मतलब क्या है? ऊंट, ऊंट जानते हो ना है, जिसकी गर्दन ऐसे होती है, जो राजस्थान में पाए जाते हैं, हैं? ऊंट देखे ना, और ये सुई का नाका क्या है? सुई जिसमें धागा, क्या उस सुई के अंदर से क्या ऊंट निकल सकता है? क्या यीशु मसीह यहां कोई मजाक कर रहे हैं, कोई हादसे की बात कर रहे हैं? क्या बात है, ये ऊंट की बात तो हो रही है, लेकिन क्या ये उसी सुई की बात हो रही है जिस सुई के, भाई इसका मतलब है कि इसका मतलब तो अगर ये वही सुई की बात हो रही है जिस सुई की यहां पर बात कर रहे हैं, एक जो साधारण सुई होती है जिससे कपड़ा सीते हैं, तो मतलब अमीर लोग तो स्वर्ग जा ही नहीं सकते, इसका मतलब तो ये असंभव है। यहां किसकी बात हो रही है? उस समय में एक द्वार होता, जैसे ये द्वार है, ये द्वार है, ये द्वार के अंदर से भाई हम निकल सकते हैं। हमारे चतमिक भैया लास्ट संडे आए थे, डेविड भाई, वो 7 फुट से ऊपर है, वो भी निकल गए इसके अंदर से, ठीक है। लेकिन अगर एक द्वार बहुत एक द्वार होता था, बहुत ही छोटा, बहुत ही सकरा द्वार होता था उस समय में, उसका नाम था सुई का नाका। वो द्वार का नाम क्या था? उस सुई के नाके जो द्वार था उसके अंदर से आदमी, एक आदमी निकल सकता था। और यीशु मसीह यहां जो बात कर रहे हैं उस द्वार की बात कर रहे हैं, सुई के नाका जो द्वार है उसकी बात कर रहे हैं, ये उस सुई की बात नहीं कर रहे जिससे कपड़ा सीते हैं भाई, उसका उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से तो ऊंट का भी निकल नहीं सकता, ऊंट का बच्चा भी नहीं निकल सकता उसके अंदर से, तो प्रॉपर ऊंट की तो बात ही अलग है। वो सुई के नाका एक द्वार है, उसकी बात कर रहे हैं,
और यहां बोल रहे हैं यीशु मसीह के भी परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का उस सुई का नाके वाला जो द्वार है उसमें से निकल जाना सहज है। मतलब ऊंट का निकलना बड़ा उसके अंदर से आदमी निकल सकता है, लेकिन ऊंट बड़ी मुश्किल से निकलेगा, लेकिन निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई धनवान जो है, उस धनवान जो है वो स्वर्ग के राज में आएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप, प्रभु अनुग्रहकारी हैं, प्रभु जो अनुग्रह कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना प्रभु जो चुन रहे हैं आजकल, अगर इतिहास को उठा के देखें, मिडिल क्लास या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको उनको चुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं किसको बचाने आया हूं, पापियों को। और जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं वो ज्यादातर वही हैं जो क्या कहते हैं, जो अपना जो भाई सही हैं, और उनके नजर में जो अंडर प्रिविलेज हैं या मिडिल क्लास हैं, ये पापी हैं हमारे भारत के अंदर अगर देखा जाए। और यहां पर जो यीशु मसीह जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। जब प्रभु किसी को धन देता है वो इसलिए देता है ताकि उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल हो। यहां पर और यहां पर यीशु मसीह आगे कुछ और बोलते हैं, ठीक है, पहले अचंभित हो गए, अब चकित हो गए। हाँ,
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन।
ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि भी यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर भाइयों बहनों माता पिता बाल बच्चों खेतों को छोड़ देता हो। मैं इसका मतलब क्या है, क्या यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि भी भाई सबको छोड़ देना है, माता पिता को छोड़ देना है, पत्नी को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, अपनी सारी बातों को छोड़ देना है। यहाँ पे क्या यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं? कई लोग ना कई जगह कई कलीसियाओं में लोग इसको बहुत ही ऐसे ही लेते हैं, क्या प्रभु तो सबको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और लोग अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अब सबको छोड़ देते हैं, क्या ये उस प्रकार की बातें कर रहे हैं? नहीं, यहां पे जो बात हो रही है ये बात हो रही है प्राथमिकता की। किसकी बात हो रही है? यहां पहली बात हो रही है प्राथमिकता की, दूसरी बात हो रही है, अब ये जो यहां पे जो बात हो रही है, जैसे भी भाई हैं या बहन है या माता पिता है या बाल बच्चे हैं, भाई ये जो है अब यीशु मसीह को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में, यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए। तो क्या होता है जब यीशु मसीह जीवन में आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे जो विरोध में जो उठते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं। कौन उठते हैं? हमारे अपने ही उठते हैं, हमारे अपने ही बोलते हैं। और यहां पर कुछ इसी बात को लेकर बोल रहे हैं कि भी जब तुम्हारे ऊपर, जब तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह आ गए, और जब तुम्हारे माता बहन भाई बहन जब यीशु मसीह को नहीं जानते, और जब तुम्हारे पर वो सताव लेकर आ रहे हैं, जैसे यहां पर इसमें 30 के अंतिम में लिख रखा है, जब वो सताव आपके पर लेकर आ रहे हैं, जब आपको यीशु मसीह के नाम के कारण बुरा भला कह रहे हैं, जब आपको कुछ कुछ कह रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करना है? यीशु मसीह को छोड़ना है या उनको छोड़ना है? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, और जब यीशु मसीह जीवन में आए हमारे परिवार में, मैं अपना उदाहरण देकर बताता हूँ। अब तो हमारा मम्मी और पापा की तरफ से बहुत बड़ा कुनवा, इतना बड़ा कुनवा कि दो बात भर जाए, इतना बड़ा कुनवा मम्मी की तरफ से बहुत सारे थे। जब यीशु मसीह जीवन में आए, हमारे सबसे पहले हमारे अपनों ने ही, हमारे जो अपने थे उन्होंने ही हमको ऐसे से बोलना शुरू कर दिया, इनका तो हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। हुक्का पानी समझते ना, बंद करने का मतलब इनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, इनको समाज से निकाल देना चाहिए, इनका भाई इनको समाज से निकाल देना चाहिए, इन्होंने ना अपना बाप बदल लिया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल, अलग अलग बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोली जा रही है, ठीक है। लेकिन हमने ये बात सोच लिया, भाई जो यीशु मसीह के खिलाफ नहीं है, जो यीशु मसीह के खिलाफ नहीं है वो हमारा है, जो यीशु मसीह के खिलाफ नहीं है भाई वो हमारा नहीं है। इवन हमारे जो सगे मामा थे, एक बार रात में वो शराब पीने वाले थे, उन्होंने बोला मैं शराब पीना छोड़ दूंगा,
तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। ये उदाहरण दे रहा हूं जो यहां पर जो इसको लेकर, पता मेरे पापा ने क्या करा, मेरे पापा ने रात के 11:30 बजे ठंड के समय में उनको बोला निकल जा से, रात के 11:30 बजे भगा दिया उनको घर से, क्योंकि वो इस प्रकार से कर रहे थे। वो क्या करते थे, वो क्या खाते थे पीते थे और क्या करते उसमें, नए नए विश्वासी थे हम। तो यहां पे कुछ इस प्रकार से बात हो रही है, जब यीशु मसीह जीवन के अंदर है विरोध होंगे, लोग कुछ भी डायरेक्टली यीशु मसीह के पास आने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़कियों ऐसे बोलेंगे लड़की की शादी होगी नहीं होगी पता नहीं, लड़के की शादी होगी नहीं होगी, ओ पता नहीं भाई क्या कहते हैं लोग तुम्हारे साथ सही रिश्ता रखेंगे नहीं रखेंगे, देख ऐसा हो गया वैसा हो गया। और यहां पर बोल रहे हैं कि भी जब यीशु मसीह जीवन में आ गए हैं तो तुम्हारे पर जो सताव हो रहा है तो तुम्हें इन सारी बातों को छोड़ना पड़ सकता है। कई लोगों ने अपने जायदाद को भी छोड़ दिया है मसीह कारण, क्यों उनको उन्होंने बोला भाई जायदाद ले ले या तू यीशु मसीह ले ले, यीशु मसीह को ले ले या जायदाद ले ले। कई लोगों ने अपनी जायदाद को छोड़ दिया है मसीह कारण, और यहां पर यीशु मसीह कुछ इसी प्रकार से बोल रहे हैं, बोले सताव के साथ परलोक में मतलब अनंत जीवन में, अनंत जीवन। और फिर 31 में देखो क्या लिखा है, इसका मतलब हम जो पिछले वाले हैं या पहले वाले हैं, हम कौन से वाले, पिछले वाले पहले वाले, हम पिछले वाले हम पहले वाले नहीं है। ये जो पहले वाले की बात हो रही जिसमें ये वो हैं जो यहूदी लोग हैं जिसमें से यीशु मसीह का जन्म हो, जिसमें फरीसी हैं शास्त्री हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, यीशु मसीह को पहचाना नहीं, यीशु मसीह के विरोध में हो गए, यीशु मसीह को मारने के लिए षड्यंत्र रचाने लगे। और यहां पे पिछले मतलब जिनको यीशु मसीह बाद में चुन रहे हैं, जिनको यीशु मसीह दूसरे समुदाय में से चुन रहे हैं, दूसरे देशों में से चुन रहे हैं, और यहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। और हम कौन से वाले, पिछले थे लेकिन अब क्या हो गए, पहले वाले हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से, यीशु मसीह की इस बात में को विश्वास करने से कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरकर वो तीसरे दिन जिंदा हो गए, मेरे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, मेरे को सारी बातों से शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, मेरे को अपनी बेटी अपना बेटा बना लिया है, मेरे परिवार को अपना बना लिया है। इस बात से यीशु मसीह कहां पर है, यीशु मसीह कहां पर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, कहां पर है। और इतना याद रखें हमारे जीवन में जो सबसे पहला जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, जहां यीशु मसीह है वही अनंत जीवन है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो अनंत जीवन हमारे जीवन में है, आ गया ऑलरेडी, हम उसके वारिस होने ही वाले हैं, जहां पे ना दुख है ना चिंता है, ना पैसे को लेकर जो चिंता है, ना घर की किसी बात को लेकर चिंता है। ये यहां पर एक सवाल है हम सबके लिए, कौन है पहले हमारे जीवन, यीशु मसीह, पैसा या दुनिया की चीजें। आई क्यों ना यीशु मसीह को अपने सर पे बैठाएं, यीशु मसीह को अपने हृदय में बैठाएं, यीशु मसीह को अपना जीवन अपना शरीर दे दें, अपने आप को दे दें, और उसको बोले यीशु मसीह तेरा है, तू चला है, तू चला है, जैसे लेकर चलना चाहता है। मुझे पता है कि जहां तू है वहीं अनंत जीवन है, जहां तू है और जहां तू है वहां किसी बात की कोई घटी नहीं। आई क्यों ना उसके सम्मुख जाए, प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, हमें सिर्फ आप चाहिए प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आप है तो सारी चीजों की उपलब्धि है प्रभु, आप है तो प्रभु आप हमारे जीवन में, यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ है तो आप हमें उभार सकते हैं, आप हैं तो हमारे जीवन में प्रभु शांति है, हमारे परिवारों में शांति है, हमारे मनों में शांति है, हमारे घर में आनंद है प्रभु। और प्रभु होने दे कि हमारे बीच में यदि किसी के जीवन में आप प्राथमिकता नहीं है तो आप प्राथमिकता होने पाए, धन पे भरोसा किसी का है तो धन पे भरोसे से प्रभु आपके ऊपर भरोसा होने पाए, किसी का अगर जॉब पे भरोसा है प्रभु जॉब पे भरोसा ना हो वरन प्रभु आपके ऊपर भरोसा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु किसी का यदि किसी और बातों में भरोसा है उनसे हटाकर उनका विश्वास आप पर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।